एक और अंतिम ऐसा मैं कौन हूँ, तो भीतर से उत्तर आया कह रहे ये पूछ रहे हैं कि कौन ये कौन, ये जो देख रहा है कि पिछले क्षण जो था इस क्षण नहीं है, कुछ बीत गया है कुछ नया आ गया, वो कौन है तो देखो। और अभी कल इसका एक उत्तर के भीतर से आ रहा है कि निश्चय वह तो मैं ही ध्रुव मैं। ऐसा करके जो है इन्होंने शुरुआत करी है कि हम अपने अतीत में बहुत कुछ जी चुके हैं, तब भी हम थे और वर्तमान में जो हैं और आगे भी हम रहेंगे, ये इस बात की सूचना है। और इसी को जो पता करते हैं वो खोज पाते हैं कि मैं कौन है, इसके जवाब में ये चीज़ देखी है। फिर मैंने क्या क्या त्रिपृष्ठ पूर्व भाव का वैरी मेरे उसमें आया तरह से। अब दूसरे से यज्ञ पुरुष का आरोप है, अब जो है वो जब गुजार देने के बाद में फिर जब कहाँ कहाँ क्या ये अंतरिक्ष में मतलब स्वर्ग में से फिर पृथ्वी थे स्वर्ग से आए थे, तो उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि किस तरह से मैं इसमें आया हूँ इस परिवार में, उस परिवार के बारे में श्री कुल का दूसरे अध्याय में। फिर उसके बाद देखिएगा कि बीच में उनको ये देना था, इन लोगों को सितंबर मान्यता में आता है कि देवनंदा के पहले ये गर्भ में आए थे भगवान महावीर, फिर ये जो कि ब्राह्मण थी देवनंदा, तो उन्होंने कहा जरे ऐसे कैसे हो सकता है 6 महीने के बाद ट्रांसफर गर्भ में है, सितंबर मान्यता को इसने लिया इन्होंने, तो देवनंदा के यहाँ पे आप बीच में नाम आएगा देवनंदा का, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देवनंदा जो है वो सितंबर मान्यता के अनुसार भगवान की प्रथम माता, फिर वहाँ से गर्भ ट्रांसफर किया गया कृष्णा के, कहीं होता नहीं है सब प्रकट बातें हैं, लेकिन ठीक है अब वो लिखा हुआ है तो मानना पड़ता है, तो उसमें बीच में ये भी दिया है। फिर उसके बाद प्रतीक्षा का प्रियकारिणी मतलब आने वाली प्रियकारिणी कृष्णा का दूसरा नाम था, तो कृष्णा के लिए प्रियकारिणी बोलते हैं, तो उनके लिए उनके लिए लिखा गया है वो प्रतीक्षाएँ थे, मतलब 15 महीने पहले से भगवान की जरूरत में व्यक्ति होने लगती है, वो इंडिकेशन है, वो सब चीज़ें इसमें प्रियकारिणी की, इसमें 6 महीने हो गए हैं मतलब देवों के बरस रहे हैं, तो ऐसा लगता है 6 महीने आने से पहले फिर ग्रंथि भेद की रात। ये ग्रंथि भेद की रात में जो इन्होंने यही वर्णन किया है कि कैसे भगवान और माँ के गर्भ में आए, ऐसा करके फिर मर्यादा तोड़ देकर आना महासागर, ये भी वर्णन किया हुआ है, वो मेरी देवी के देहांश, इसमें भी प्रियकारिणी के ये आ गए हैं, तो कैसी फीलिंग करती हैं वो त्रिशला भगवान के आने से, वो सब दिया है। फिर कैलाश अवतरण, तो ये तीन लोग के नाम आ गए हैं उनके अवतरण की प्रक्रिया। फिर यहाँ से आपको बहुत बिजी लगेगा, बाल भागवत के लीला खेल, ये जो है 56 पेज से फिर एकदम इजी लगने लगेगा, क्योंकि ये पुराना वर्णन है, फिर नए सिरे से ये इसमें करेंगे, इसमें बहुत अच्छा है। इसके बाद तो 3 वर्ष बालक 3 वर्ष का है कि 13 वर्ष का निर्णय करना चाहिए, माँ और पिता से तो पुछाता ही है, पर परिजन कहते हैं एकदम जनपदी भाषा बोलता है, पंडित कहते हैं कि शुद्ध संस्कृत बोलता है, वो परिजन सब सुनकर अदरस से ठगे रह जाते हैं। इधर एक नया उपद्रव खड़ा कर दिया उसने, राज प्रांगण की सीमा लांघकर नगर की फेरी ले आता है, राह चलते लोगों से बताता है प्यार से, कोई पकड़ने दौड़े तो हवा की तरह खांसने कर जाता है। मैंने पूरा उनका एक ऐसा वर्णन किया है भगवान का, पूजा पाठी ब्राह्मणों की शामत आ गई है, जाकर कहता है कि वो पूजे पाठ बंद हमारी बात सुनो, पूजा बंद हमें पूजो, यज्ञ बंद हमारा यज्ञ बंद, बेचारा ब्राह्मण आपा को बैठता है, अग्नि नीले पुरोहितम कहते कहते नमः श्री वर्धमानाय बोल रहे हैं इस तरह से। फिर गौशाला में जाकर के इन्हें जो है नंदी गाय के उसका दूध पीना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं ऐसा करते नहीं है भगवान, लेकिन सुनकर के राजकुल की मर्यादाओं में बनी हुई कृष्णा की भूमि ऊंची हो गई, रोज से डपट कर बोली मैंने कैसे एकदम बचाएंगे, खबरदार आज के बाद महल से नीचे उतरा, क्या मैं मर गई हूँ, हर किसी का दूध पीछा तो शायद गाय के भी दूध पीने लगा, तेरे उपद्रव गिरा दो गई, अच्छा ये सब तेरी कौन है, तो बोलते अम्मा है माँ, इतनी सारी अम्मा है मेरी सब अम्मा है, अरे तो क्या मैं कम पड़ गई क्या तेरे लिए, तुम तो हो ही माँ पर और भी सब अमूरी अम्माएं चाहिए, तू मेरा बेटा और किसी का नहीं, नहीं माँ मैं तुम्हारा भी हूँ पर केवल तुम्हारा नहीं हूँ, लगता है सब अम्माओं का मैं बेटी है, अम्मा तो तेरी एक है समझा कि नहीं तू, मैं और सब अम्माओं की बात पे कोई मक्का नहीं, वो क्या है विश्वंभर क्षण भर को साधारण नारी के एकांत वात्सल्य विकार से शालु होती बोली धराय स्वर से कि मेरा हाथ तो अब तुझे देखा नहीं सुहाता, तरसती रह जाती हूँ, मेरा हाथ लटक कर भाग जाता है। बाकी सुंदर बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देख करके कुमार गंभीर हो गए। चुपचाप आकर के और माँ के आंसू पहुँच करके उन्हें बहुत प्यार किया। फिर माँ का मन चाहा उनकी गोद में लुट गया। माँ बहुत खुश हुई, पूरा उसमें वर्णन करिएगा। फिर समझती हूँ महारानी माँ सची अपने अज्ञान पर लजा गई, जानकर भी अनजान उन्हें बोली समझती थी हूँ राधी सब समझती हूँ तेरा खेल, पर अब तो कहीं जाना नहीं। बोले बापू के पास भी नहीं जाऊँगा क्या उन्हें प्रणाम करने के लिए? बोलती वहाँ तो तू जाएगा। अच्छा अच्छा हम सब समझ गए तुम्हारे मन की बात, किसी को बताएंगे नहीं। ऐसे करके पूरा पढ़ने लगे। हाँ,
माता जी मान बनती रहती है, कैलाश पर्वत पर रोते हैं, बार बार जाते रहते हैं, आते रहते हैं, मतलब इस तरीके से ध्यान रखते हैं।
देखिएगा तू मेरा बेटा है ना माना, अरे वाह ये कोई पूछने की बात है, वो तो हूँ। और तेरे बापू का बेटा है ना, वो तुम कहो तो फिर मैं उनका भी हूँ। नहीं तू केवल मेरा बेटा है ना, मेरा राजा बेटा है। कहते भैया हम बार बार क्या कहना, नहीं कहो कि सिर्फ और किसी का नहीं मेरा। हाँ हाँ तुम्हारा भी नहीं कहते तुम्हारा भी नहीं मेरा ही बोलना ही नहीं माँ भी, इसका भी कोई अर्थ, इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। अर्थ क्यों निकालती हूँ माँ, जो है सो है, मतलब हम तुम्हारे भी हैं और सबके भी हैं, तो फिर हम तुम्हें नहीं रखेंगे। देखो भाई सच्ची बात बता दें, बता ना सका था क्या मुझे, हम तो किसी के बेटे नहीं है, अपने ही बेटे हैं। इतनी बड़ी बात है,
सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही करता,
हम तो किसी के बेटे नहीं है, अपने बेटे हैं, मेरे और बापू का भी नहीं। अच्छा माँ तो सुनो, तुम भी हमारी बेटी हो, बापू भी हमारे बेटे हैं, और हम सब अपने अपने बेटे हैं। तुम अपनी बेटी हो, तात अपने बेटे हैं, अपने बेटे हैं, हम तुम दोनों के बेटे हैं, हम सब के बेटे हो गया ना, और क्या चाहिए। अनेकानंद दर्शन से माँ कुछ ना समझ कर भी जैसे समझ गहरे बोध में डूब गई। ये मैंने जो सुनाया था कि वो इसी में है, बाहर रुक जाते हैं तब माँ कहती क्या हो भीतर क्यों नहीं आते गार्डन में, तो बोलते कि तुम जो है पूरे घास को कुचलती भी चलती हो, तो मुझे बहुत पीड़ा। माँ पिछला श्रृंगार करके कक्ष में सामने बैठी हुई, केशों का श्रृंगार फूलों से कर रही, कभी किसी ने टोका अरे माँ ये क्या कर रही है, देखो ना जूड़े में फूल टाके सुंदर लगते हैं ना, माँ बिल्कुल नहीं लगते हैं, फूल तो डाल कर ही सुंदर लगते हैं जूड़े पर। क्यों बेटा हर चीज अपनी जगह सुंदर लगती है, माँ उसे वहाँ से हटा दो तो फिर वो क्या होता है, वो मर जाती है। तुम्हारे जूड़े में मरे हुए फूल लगे हैं, उनका नुकसान तुमने छीन लिया माँ, ये ढेर ढेर फूल जो तुम्हारी सैया में स्पर्कों में तोड़ कर सजा दिए गए ना, ये सब मुझे मरे हुए। अरे वाह सुंदर लग रहे हैं, इतनी अच्छी सुगंध भरी है, फिर भी तू कहता कि मरे, पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा मत, ये फूल खुश नहीं है, नाराज हो गए माँ, ये तो डाल पर ही खुश रहते हैं, तू तो जो कहता है उसको सब अलग ही कहता है, परेशानी हो जाती है। तो फिर हम काहे से श्रृंगार करें ना, आहा तो फिर फूलों के प्राण लो भी अपने श्रृंगार से, तुम अपना श्रृंगार अपने से करो ना, अब फूल अपने से करें, तुम उनकी सुंदर तो देखो वे तुम्हारी देखें, तुमको फूल की सुंदरता से मतलब थोड़ी ही है, तुम्हें तो अपनी सुंदरता की पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, मरे फूल से श्रृंगार करके तुम बिल्कुल सुंदर नहीं लगते। ऐसा करके बातचीत बहुत अच्छी लग रही है। फिर उनके ऊपर जो उपचार हुए बचपन में उसके बारे में भी दिया है। फिर जाकर के पूरा इस पूरे अध्याय में वहां भी निष्क्रमण मतलब कैसे वो निकल जाएंगे ग्रह त्याग देंगे, ये एक पूरा चैप्टर है। भाषा थोड़ी कठिन है, देखें मैं ये दूसरे वीरन को मान गए,
इसका नाम ये अनुत्तर योगी क्यों रखा?
अनुत्तर का अर्थ होता है जिसके बाद कोई और
नहीं,
नहीं उत्तर नहीं उत्तर
अनुत्तर
अनुत्तर का एक अर्थ तो यही है कि जिसका कोई उत्तर ना हो, और उत्तर का मतलब होता है आगे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध फाइनल,
जिसकी कोई आगे
हाँ फाइनल, अब इसके बाद और क्या अनुत्तर जिसके आगे सर्वश्रेष्ठ के लिए
आगे
एक सोमेश्वर भी आएगा, सोमेश्वर एक अंग मैंने मत का व्यक्ति है, वो उनको ये अपना मित्र बना करके अन्य दर्शन के बारे में सारी बातें कहलवाते हैं। वो एक मीडिया है, सारे दर्शन जो डेवलप हैं उस समय उनके बारे में कैसे
कहें।
गर्म फिलोसफी होते हैं इसमें जो है, इसमें पूरे षट दर्शन कहलवाते हैं। सोमेश्वर के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से षट दर्शन, कौन क्या मानता है, कैसे लोगों ने मानता है, पहले पृथ्वी पर जल ही था, कोई कहता हवा ही थी, फिर उससे डेवलप हुआ है ऐसे करके, वो सब कहलवाए। फिर पूरी राज्य व्यवस्था, इसमें पूरी राजनीति आई है। जब वो एक दिन उसमें जाते हैं राजकुमार के वेश में स्वास्थ्य सभा में, तो ऐसा लेक्चर देते हैं कि सब्जियाँ उड़ जाती हैं उनकी अपनी शासन व्यवस्था की, तो वो एक लेक्चर उसमें, उसके माध्यम से राजनीति कहलवाई है जैन राज्य में। और फिर उसके बाद एक दिन सब छोड़ देते हैं, एक बैंतेई इसमें रोल है, बैंतेई जिससे कि ये बहुत उनका आत्मीय संबंध रहता है। ये नाम बिल्कुल नए हैं, हमने आखिरी में लिखा है कि मैंने ये सब अपने काल्पनिक वो लिए हैं, ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, जब हुआ हमने जानते, हमें अच्छा लगा। अब किसी से बातचीत तो करवाना पड़ेगी, अंतरंग तो एक अंतरंग मित्र भी बनाना पड़ेगा, तो उसके रूप में इनने दो नए नाम, सोमेश्वर और वैंतेई, बिल्कुल नए नाम है, किसी स्क्रिप्ट में नहीं।
जैसे
इसी तरह सबसे पहला उनका नॉवेल मुक्ति दूत है, फिर एक और
नीलांजन भी अच्छी है, लेकिन वो मुक्ति दूत के सामने होती है।
पांच भूत जैसे और दूसरे दर्शन माने हैं वैसे नहीं माने हैं, हमने इनको जीव माना है, इनको हमने जीव माना है, पांच भूत, पांच भूत जीव सत्तानम, उन्हीं को हमने पांच, इनके जो पांच भूत माने हैं वही हमारे यहाँ स्थावर माने हैं, प्राण भूत जीव और सत्त, ऐसे अलग अलग चार डिवाइडेशन कर दिए हैं। तो उसमें भूत मतलब होता है एक इंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये लोग वनस्पति का एक की जगह आकाश ले लेते हैं, जल अग्नि पृथ्वी वायु और आकाश, पंचभूत तत्वों से शरीर बना है। तो उनके यहाँ पर पांच भूत पांच तत्व माने गए, अपने ऐसा नहीं मानेंगे, ये तो पुद्गल के द्वारा बना हुआ शरीर, पुद्गल में पृथ्वी से मिला हुआ भी है, जल से मिला हुआ भी है, वायु भी है, भी है, सभी को तो इस अपेक्षा से मान ली है, तो सारा तो जीव राशि है। एक महीने से भी जा रहा हूँ, जा रहा
हूँ, इसीलिए तो महाराज जी कह रहे कि आप पहले से बता दीजिए तो वो हमारे जा रहे।
वर्तमान काल की अपेक्षा तो काल का डिवाइडेशन करते ही है, पर जो देहरादून और भरत क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों में जैसे तो पूरे जम्मू द्वीप में छह खंड डिवाइड किए गए हैं, छह भाग विभाजित किए गए हैं, भरत हरि विदेह रम्य हैं, हिरण्यवर्ण और ऐरावत ऐसा करके छह विभाग किए गए, उसमें से जो भरत और ऐरावत क्षेत्र है यहाँ पर काल परिवर्तन होता है। यहाँ छह काल जो है पहले इंक्रीज होते हैं फिर उसको डिक्रीज होते हैं। जब इंक्रीज होते हैं उसको सर्पणी काल बोलते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो उसको अवसर्पणी काल बोलते हैं। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को काल परिवर्तन कहते हैं। ये सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, विदेश क्षेत्र में ऐसा कोई काल परिवर्तन नहीं होता, वहां पर द्वापर काल हमेशा रहता है। जिस काल देखो बीच में कहते हैं अभी आएंगे, इसलिए सोच लीजिए कि जिन्हें कर तो नहीं होगा। तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी ऐसे दो काल का डिवाइडेशन हुआ, और इसके अंतर्गत भी छह छह और इरा जिसको अपन बोलते हैं इरा, एक युग जैसा कह लीजिएगा। तो जैसे वैदिक संस्कृति में चलता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ऐसे करके चार जो है डिवाइडेशन किए गए। अपने यहाँ पर काल का विभाजन छह भागों में किया, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी छह छह भागों। सबसे श्रेष्ठ रहेगा सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा, जहाँ एक्सट्रीम पर सुख होता हो, जहाँ इस काल में किसी को कर्म नहीं करना पड़ता, सिर्फ भोग सामग्री मिलती है वे उसका उपयोग करते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं, बस ये प्रक्रिया जहाँ चलती वो पहला काल कहलाएगा। अगर ये सर्पणी का पहला काल है तब इससे नीचे ये सुखमा सुखमा काल पहला काल होगा वो उस सर्पणी का नहीं होगा, और सर्पणी का होगा क्योंकि अब डिक्रीज होना है वहां से। तो उसके बाद आएगा सुखमा, माने सुख उससे कम हो गया पहले की अपेक्षा, डबल लगा था उसमें सुखमा सुखमा सुखमा। फिर उसके बाद जो है सुखमा दुखमा, कि सुखपूर्वक जन्म तो हो रहा है लेकिन मरण के समय पीड़ा होना शुरू हो, इसलिए सुखमा दुखमा ये तीसरा काल। यहां तक जो है भोग भूमि रहती है, इसमें जीवों को कर्म नहीं करना पड़ते हैं और सारी चीजें सहज उपलब्ध हो जाती है। पहले काल में जो सुखमा सुखमा काल है उसको कहते हैं उत्तम भोग भूमि, दूसरे को मध्यम कहते हैं, तीसरे को जघन्य भोग। ये जो तीसरा काल है इसके लास्ट में पहुंचते पहुंचते तक, और फिर सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, पहले नहीं दिखाई पड़ते हैं, होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि कल्पवृक्ष रहते हैं, उन कल्पवृक्षों के द्वारा ही सारा प्रकाश होता है। तो जब सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वो लोगों को मालूम नहीं पड़ता उनका। जब कल्पवृक्ष विलीन होना शुरू होते हैं तब सूर्य चंद्र का प्रकाश होना शुरू होता है, और कल्पवृक्ष खत्म होते हैं तो किसी को अब खाने पीने के लिए मुश्किल होने लगे, तो फिर वो ये छठ कर्म करने की शिक्षा जो पहला तीर्थंकर होता है उसके पास जाकर के वो सारी शिक्षा लेते हैं, तो भगवान ऋषभदेव के पास जाकर के छठ कर्म की शिक्षा ली। ये चौथे काल की शुरुआत, तीसरे काल का अंत में होगा या कि चौथे काल की शुरुआत। इस बार ऐसा होगा कि तीसरे काल के अंत में ही ये सब कुछ हो गया, होता नहीं है ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, पर सामान्य रूप से होता है कि तीसरे काल के अंत में सारी चीजें कल्पवृक्ष वगैरह खत्म होगी और चौथे काल की शुरुआत में कर्म भूमि यहाँ से शुरू होता है। अब व्यक्ति को छह कर्म करके अपना आजीविका चलाना पड़ेगी, उसके बिना उसकी आजीविका नहीं चलेगी बैठे बैठे। तो फिर जो ये कहलाता चौथा काल, चौथे काल को बोलते हैं दुखमा सुखमा, जिसमें दुखपूर्वक तो जन्म हुआ है लेकिन मोक्ष प्राप्त हो सकता है इसलिए सुख, तो दुखमा सुखमा। और तीसरे काल में सुखपूर्वक सब कुछ कर रहे थे, भोग सामग्री आखिरी में पीड़ा होने लगी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, भोग भूमि वाला मोक्ष नहीं जाता। देखो पहले दूसरे तीसरे काल में जन्म लेने वाले को सब सुख तो है लेकिन मुक्ति का सुख नहीं है, और चौथे काल वाले को पीड़ा उत्पन्न है लेकिन आखिरी समय मोक्ष हो सकता है इसलिए सुख है, तो उसको दुखमा सुखमा काल कहेंगे चौथा काल। ये काल हमेशा विदेश क्षेत्र में रहता है। अब इसमें भी क्या होता है कि चौथा काल शुरू हुआ तो जो सबसे पहले स्थिति रहेगी वो अंत तक तो जाकर नहीं रहेगी, धीरे धीरे जो है धर्म की शुरुआत भी होगी और अंत तक जाकर के धर्म का राज भी हो जाएगा। चौबीसों तीर्थंकर इसी काल में होते हैं चौथे काल, और चौथे काल के अंत होते ही साथ तीर्थंकरों की उत्पत्ति समाप्त हो जाती, कोई तीर्थंकर नहीं होता। फिर पंचम काल उसको बोलते दुखमा काल, यहाँ पर सब कुछ दुखमय ही होगा, कहीं कोई सुख नहीं मिलेगा, ना भौतिक सुख ना आध्यात्मिक सुख जैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मुक्ति भी नहीं होगी पंचम काल में। थोड़ा बहुत जो सुख मिलेगा वो मिलेगा, भौतिक सुख भी उतना नहीं मिलेगा जितना कि पहले दूसरे तीसरे काल में भौतिक सुख हुआ करता था, वैसा भी नहीं रहेगा। तो दुखमय काल की और फिर छठे काल में बहुत का नाम ही है दुखमा दुखमा, एक्सट्रीम पर पीड़ा पहुंच जाएगी व्यक्ति की कि धर्म भी नष्ट हो जाएगा। पंचम काल के अंत तक धर्म चलता है, उसके बाद धर्म भी नष्ट। इस तरह से ये छह काल जो है डिक्रीज हुए ऊपर से नीचे तक। इसी तरह जब इम्प्रूव होता है अब फिर इसके बाद साइकिल सर्किल है, एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज किस तरह होगा, तो पहले अब पहला काल आएगा तो कौन सा होगा, दुखमा दुखमा। तो दुखमा दुखमा चल रहा है, ये फिर से रिपीट होगा, वो इंक्रीज करेगा। अब की बात अभी तो जो है ये यहाँ पर पंचम काल खत्म हुआ और छठा काल यहाँ तक आना था, तो इतना डिक्रीज हुआ इस तरह से, अब यहाँ से इंक्रीज होगा वापिस। तो इंक्रीज अभी यहाँ पर जो है मैक्सिमम पंचम काल के अंत तक जो है उम्र रह जाएगी 20 वर्ष की, 120 स्टार्टिंग में और 20 लास्ट में रह जाती, उससे भी कम होते होते छठे काल में आई, अब फिर इंक्रीज होगी पंचम काल के आते आते तक। लेकिन ये जो इंक्रीज हो रहा है दुखमा दुखमा, ये उत्सर्पणी का पहला काल है, उत्सर्पणी का पहला काल। जो अवसर्पणी का छठा काल है वही फिर से रिपीट होगा, उससे हम अवसर्पणी का पहला काल
बोलेंगे। तो जितना
उतना ही उसका
डबल हो गया।
अब पीरियड और अपन एक बार देख लें, टोटल जो है ये छह काल का पीरियड है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुना करो तो उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी, करोड़ में कोटी 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 स्क्वायर, 10 करोड़ 2 इस तरह इतने वर्ष का, इतने सागर, सागर बहुत लंबी थोड़ी निकाली है, एक बूंद एक बरस में निकालिएगा पूरे सागर में से तो मानिए कब खत्म होगा सागर, इतना बड़ा पीरियड, ये इमेजनरी टर्म कहलाती है, तो बहुत बड़ा काल है। उसमें से पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा होगा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, इस तरह से कम होता है। अब चौथा वाला काल जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर से 42,000 वर्ष कम, वो जो 42,000 वर्ष बचे 1 कोड़ा कोड़ी सागर, क्योंकि 4, 3, 2, 4, 3, 7, 2, 9 1 कोड़ा कोड़ी सागर में चौथा काल भी आ गया और उसमें से 42,000 कम कर दिए, तो पंचम काल 21 का, छठा काल 21 का, इस तरह से जो है छठे काल का 10 कोड़ा कोड़ी सागर माफ बन गया। तो वो जो 21,000 छठे काल का है वही 21,000 पहला काल हो जाएगा उत्सर्पणी का, फिर और ज्यादा इंक्रीज होगा तो पांचवा काल आएगा तो वो कहलाएगा दूसरा काल सप्तमी का, और चौथे काल का जैसा तीर्थंकर हुए थे ठीक वैसे ही जो है इसके तीसरे काल में होंगे उत्सर्पणी के, अवसर्पणी का चौथा, उत्सर्पणी का तीसरा, यहाँ से तो इसमें तीसरे काल में उत्सर्पणी के तीसरे काल में कर्म भूमि रहेगी और लोग तीर्थंकर होंगे, और फिर जैसे जैसे समाप्त होगा फिर जघन्य भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, मतलब दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा सुखमा, ये इंक्रीज होता जाएगा, ये कहलाएगा उत्सर्ग जो जो नीचे से ऊपर बढ़ रहा है और जो ऊपर से नीचे गिर रहा था वो कहलाएगा अवसर्ग। इस तरह से उत्सर्ग नहीं अवसर हमेशा चलता रहता है, ये इसमें मैंने इसी को अपन बोलते हैं पंचम छठे काल के अंत में प्रलय होगी, प्रलय होगी फिर नई सृष्टि का जन्म होगा, फिर असंख्य अनकाउंटेड। हाँ, और ये जो बीच में प्रश्न आ गया था ना, तो उस प्रश्न को अपन सॉल्व कर लें कि ये जो अपना वर्तमान चार काल चल रहा है उसको कहते हैं हुंडा अवसर्पणी, अवसर्पणी भी हुंडा, हुंडा मतलब सब कुछ विपरीत होगा, अच्छा नहीं, तो हुंडा अवसर्पणी कहते हैं इसको। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक बार ये उत्सर्पणी काल में इस तरह का दोष उत्पन्न हो जाता है कि सब कुछ विपरीत होने लगेगा, चक्रवर्ती को हारना नहीं चाहिए, चक्रवर्ती हार जाएंगे, तीर्थंकर को पहले मोक्ष जाना चाहिए तो कोई और मोक्ष चला जाएगा, तीर्थंकर की विधि अंदर होंगी तो उनके बीच विधियाँ पैदा हो जाएंगी, ये इस तरह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस जो है इसमें पैदा होते हैं, इसी को हुंडा। अब इसमें मज़ेदार चीज़ जो अपने को समझने की है वो ये है कि पहले काल का वर्णन और फिर दूसरे काल में किस तरह से भोग भूमि में रहता है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा तीसरा काल, क्योंकि तीसरे काल के अंत अंत में चेंजेस होते हैं और 14 फुलकर जो है वो उत्पन्न होते हैं, और किस तरह से 14 फुलकर उत्पन्न होते हैं ये वर्णन इसमें पढ़ने के लिए। तो वो तो उनका अवसर नहीं किया, इसलिए तो उसको टच ही नहीं कर रहा है, उसको तो बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे शॉर्ट में ये 10 प्रकार के जो है जानने लायक हैं कि वो आपने एक बार लिख के दिया था, मध्यांग, तूर्यांग, विषुषांग, माल्यांग, ज्योतिरंग, दीपांग, ग्रहांग, भोजलांग, पात्रांग और वस्त्रांग। ये 10 प्रकार कल वृक्ष होते हैं, जिससे कि सारी चीजें जो है लिखती रहती, जो अपने उपयोग की है वो सब लिखती है। कुलकर है तो 13 कुलकर तक तो ये स्थिति बनेगी कि क्या होता है वहां पर भोग भूमि में जोड़े रहते हैं पेयर, वो पैदा भी होते हैं तो पेयर ही पैदा होते हैं और वो ही दोनों एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में रहते हैं पूरे जीवन, उसमें इस तरह का संबंध था। हुए वैसे वो भाई बहन, क्योंकि एक ही उससे माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन वो रहेंगे जीवन साथी की तरह, एक दोनों एक दूसरे के साथी की तरह एज ए फ्रेंड जो है वो रहेंगे पूरे जीवन भर। और फिर जब वो उनका मरण होगा तो कैसे होगा, या तो छींक आ जाएगी और मरण हो जाएगा, जब भाई आएगी और उनका मरण हो जाएगा, और उनके मरण होने उनका मरण होगा और उनके दो संतान वो अपना छोड़ करके जाएंगे, वे अपनी संतान का मुंह नहीं देखते। ये भोग भूमि के दिनों
उनके
हाँ उनका इधर जन्म हुआ उधर उनका मरण हो, दोनों का समय एक ही है, इनके जन्म का समय और इनके मरण का समय, तो उन्होंने उनको देखा ही नहीं कि कैसे उनको ना उनको कोई जन्म की पीड़ा भोगना पड़ती। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके भोग भूमि खत्म होती है तो फिर जो है उनको ये पहली बार जब 14वें नंबर के कुलकर होते हैं तब पहली बार इनको इनके सामने इनके मरण के पहले ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब फिर उनको सारा कुछ बताते हैं कि अब कैसे जो है ये पैदा हुए हैं तो उनको कैसे साफ संभाल करो, तब वो पूरी गर्भांतर क्रिया जो है वो पूरी की पूरी फिर जो अंतिम कुलकर रहते हैं वो बताते हैं। नाभि राय ने जैसे बताई तो नाभि को काटने के की प्रक्रिया जिसने बताई उनको नाभि राय, इसलिए उनका नाम नाभि राय। ये इसके बारे में अंतिम कुलकर वो कहलाते हैं, मैंने कहा था ये जो सबको एक परिवार की तरह रहने के लिए प्रेरणा देते हैं वो कुलकर के। सारा कुछ देवों की तरह रहता है, वो भूमि के जो रहते हैं उनका सब कुछ देवों का उतना ही वैभव रहता है जैसा कि देवों के बने। वो उनको कुमार के समान रहते हैं, जैसे नाग कुमार, तो नाग कुमार मतलब जैसे कुमार अवस्था में व्यक्ति रहता है उनका बुढ़ापा नहीं आया, किसी को कुमार अवस्था बोलते हैं। देवियों की आयु कम होती है, उल्टा कह सौधर मिल के एक ही सौधर मिल की दो सागर है, तो देवी की तो मैक्सिमम 5 पल की होगा, 55 पल की तो 16 साल में होगी, सौधर वाली की तो 5 पल, और 5 पल 15 नील की संख्या के बराबर 2.5 सागर की आयु में, 2 सागर की आयु में सौधर की नील की संख्या 15 नील के बराबर देवांगन हो जाती है। ये प्रश्न आया था कि जो देवांगनाएं इनका नियोग है सौधर्म स्वर्ग के इंद्र के साथ और सौधर्म स्वर्ग के इंद्र का मरण हो गया तो फिर भी देवांगनाएं उसी अवस्था में शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती, आयु व्यतीत करती है, किसी दूसरे देव के साथ उनका पहले नहीं होता।
अभी चर्चा चल रही थी जिसमें बोला कि इसका ध्यान 6 माह तक खाली रह सकता
है मैक्सिमम।
तो
6 महीने तक वो कहीं कहीं बना आता है कि देवी ने 6 महीने तक मंदिर में रहकर शास्त्र स्वाध्याय इत्यादि करके समय निकाला।
हाँ, उसके बाद जब सेकंड अपना आते हैं 16 महीने के,
उनके साथ उनका नियोग नहीं होगा, जिनका नियोग होगा वही मिलेंगे उनके लिए। उनकी आयु समाप्त हो गई थी, ये मैं आचार्य श्री से काफी डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा ये तो ये पॉइंट जो है विधवा विवाह का समर्थन करने वाले लोग दे सकते हैं। हाँ, ये जो उनके लिए पॉइंट है, इस तरह की बोध करने वाले वही है। बाकी देवों में, देवियों में ऐसा नहीं होता कि एक देव जिससे नियोग था और उसके मरण के बाद दूसरे देव के साथ चली जाए, ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। कहीं लागम में ऐसा आता नहीं, कहीं चार निकाल लो आप घुमा फिरा करके तो निकाल सकते हैं। बस हट जाती है वो, अपना उनके अपनी आई करते हैं, अभी तो अपने जैसे ही है। काम के बारे में इतना ही ख्याल किया, थोड़ा थोड़ा जो है लिखना चाहे तो लिख लें, ताकि काम कम उत्सर्पी और अवसर्पी सामान्य रूप से इनकी परिभाषा है। जैन आगम में थोड़ा राजनीतिक स्थिति कहलाती है क्या? अच्छा, मतलब कल आप लोग आए नहीं, कल का गौशाला के बारे में चर्चा करनी थी, सुबह के टाइम में कर लें, 9 बजे के लगते हैं सुबह ही होता है हम लोग बैठ रहे हैं सुबह। कल तो 5 बजे सब थे, पहुँचने के बाद थोड़ा बोल देना और अधिक की हमें बैठ करके अपन पूरी करना है। तो जैन आगम में क्या लिखा बोले, काल परिवर्तन उत्सर्पणी और अवसर्पणी इन दो रूपों में होता है। काल परिवर्तन के दौरान जिस काल में मनुष्यों की आयु काल परिवर्तन के दौरान जिस काल में मनुष्यों की आयु बल और ऊंचाई आदि क्रमशः बढ़ते जाते हैं, क्रमशः लिखा है क्रमशः, किंतु शब्द मतलब डिक्रीज होगा तो क्रम क्रम से, इंक्रीज होगा तो क्रम से, क्रमशः बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसे उत्सर्पणी कहा है। और काल परिवर्तन के दौरान जिस काल में और काल परिवर्तन अब तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, काल परिवर्तन के दौरान जिस काल में शुरू से तो नहीं लिखना दरवाजा लगा के इस तरह लिखते हैं अभी ठीक है। काल परिवर्तन के दौरान जिस काल में मनुष्यों की आयु बल ऊंचाई आदि क्रमशः घटती जाती है, उसे एक अवसर्पणी काल कहते हैं।
अवसर्पणी और ये उत्सर्पणी ये इनका क्या शब्दों का सेंडिंग
है? हाँ, उत्सर्पणी मतलब
इन्हीं शब्दों का होता अर्थ अलग है।
उठ मतलब उठना, और अव मतलब अवपतन कहते ना अपन, जैसे उत्कर्ष और अवकर्ष अपकर्ष, इसी तरह ही है सब। उत लगा दिया तो इंक्रीज होने के अर्थ में आ गया, और अव लगा दिया तो डिक्रीज। तो हो गया पूरा, एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी मिलकर, एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी मिलकर कल्पकाल के, एक पूरा कल्प मतलब जिसमें एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी, एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी को कल्पकाल कहते हैं। एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोटि सागर का होता है, एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोटि सागर का होता है, जिसमें 10 कोड़ा कोटि सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोटि सागर का उत्सर्पणी का हम पैसे बोल रहे हैं, लिखा कभी दस कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल, ये अपन ने उसका वो भी लिख दिया रामायण। प्रत्येक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के 6-6 भेद हैं, प्रत्येक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के 6-6 भेद हैं। सुखमा से ज्यादा जल्दी क्लियर होता है, सुखमा सुखमा। नंबर टू सुखमा, नंबर थ्री सुखमा दुखमा, फोर दुखमा सुखमा। लिख रहे हैं नंबर चार क्या लिखा,
दुखमा सुखमा।
नंबर पांच दुखमा लिख रहे हैं,
नंबर पांच
दुखमा, नंबर छह दुखमा दुखमा,
पांच
भी दुखमा, छठवा
भी
दुखमा
दुखमा,
भी ज्यादा इस तरह
से।
इसमें अब ये हर एक में रहेंगे, उत्सर्पणी में भी अवसर्पणी में भी। अब अवसर्पणी में कैसे रहेंगे, तो पहले सुखमा सुखमा रहेगा, लास्ट में दुखमा दुखमा रहेगा। उस सर्पनी में कैसे रहेंगे, तो पहले दुखमा दुखमा रहेगा, लास्ट में सुखमा सुखमा रहेगा। इस तरह से जो है रहेंगे छाओं में, लेकिन पहला कौन सा रहेगा आखिरी कौन सा रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उस सर्पनी है कि अवसर्पणी है। अब इन पांचों छाओं कालों में क्या क्या होता है ये अपन देखेंगे, सुखमा सुखमा में क्या होगा ये अपने को मालूम है कि उस काल में किस तरह की प्रोसीजर होगी, लोग किस तरह अपने लाइफ पैटर्न क्या होगा सीधी सीधी, तो ये दिया हुआ है मनुष्य तेरे अंचों का लाइफ पैटर्न किस काल में कैसा रहेगा, ये भी समझ लिया। कल अगर आएगा तो जरूर देखिए।
ये जो आपने बताया कि इतना ही
वो क्या बहुत बड़ा